सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 137वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की नवीनतम कड़ी में इतिहास और विरासत से लेकर नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, पर्यावरण, कृषि नवाचार, अंतरिक्ष विज्ञान और स्थानीय उद्यमिता तक अनेक विषयों पर बात की और इन सभी में जन भागीदारी तथा देशवासियों के छोटे बड़े प्रयासों को खास महत्व दिया। इन पर चर्चा करने और उनके सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भ को समझाने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री अशोक टंडन। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
अशोक जी, सबसे पहले समग्र रूप से देखें तो आपकी नजर में मन की बात की इस कड़ी का केंद्रीय संदेश क्या है?
हर मन की बात एपिसोड की तरह प्रधानमंत्री ने 137वीं कड़ी में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो मन की बात है ये एक मंच है जहाँ पर प्रधानमंत्री देश के अन्य अन्य क्षेत्रों में, दूर दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे लोग जो नए नए प्रयास करते हैं, यानी जिनके इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, उन पर प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं और उन आइडियाज से प्रधानमंत्री बहुत कुछ सीखते भी हैं और फिर उन प्रयासरत लोगों के साथ संवाद भी करते हैं। तो ये कोई एक तरफा मंच नहीं है। जैसे आज भी उन्होंने शुरू में एक बहुत लंबे समय तक एक संवाद किया एक ऐसे एक व्यक्ति से जो सोशल मीडिया के द्वारा, जिन्होंने प्रधानमंत्री को ये बताया था कि वो अब एक ऐसी वेबसाइट उन्होंने बनाई है जिससे कि वो भारतीय इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी देने लगे हैं। तो प्रधानमंत्री ने उसमें रुचि दिखाते हुए उनसे बहुत देर तक संवाद किया। तो ये अपने आप में एक बहुत अनूठा प्रयास ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी इनोवेटिव आइडिया की चर्चा करके निकल जाएं। तो इस प्रकार से ये जो संवाद आज बहुत लंबा चला और आपने जैसे कहा कि और भी बहुत विषयों पर प्रधानमंत्री ने जो चर्चा की आज, उसमें आपने भी जैसे बताया कि नशा मुक्त भारत किस प्रकार से बनाया जाए, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये एक अभियान जो चला है इस समय पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एक उन्होंने कहा कि ये इस समय पूरे देश में एक सामूहिक संकल्प है कि हमें नशे की लत से खुद भी नहीं पड़ना और लोगों को उसमें से भी निकालना है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री संवाद के जरिए भारत की या देश की या समाज की जो समस्याएं हैं उनको भी उजागर करते हैं, लोगों को भी उन अभियानों में जोड़ते हैं और जो लोग बड़े अच्छे काम कर रहे हैं इनोवेटिव आइडियाज के साथ उनकी सराहना भी करते हैं और उनसे संवाद भी करते हैं।
जैसा आपने कहा था कि इतिहास को नई और रोचक दृष्टि से समझने के लिए तकनीक के इस्तेमाल का उदाहरण भी दिया है प्रधानमंत्री ने भारत राज्य जैसे प्रयासों के संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि डिजिटल माध्यम से नई पीढ़ी को भारत के इतिहास और कम चर्चित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम तैयार हो सकता है?
बिल्कुल, जैसा प्रधानमंत्री ने भी ये जो कृष्ण शेषाद्री जी से आज लंबा संवाद किया और उसमें उन्होंने ये भी देखा कि जो इतिहास हमारे स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है वो एक ही किसी विशेष एक कालखंड या एक एम्पायर या किंगडम को वो एक ही दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि हमारे देश में जो हमारी विरासत है उसमें कितने ही ऐसे साम्राज्य हुए जिन्होंने भारत पर लंबे समय तक अपनी संस्कृति को, अपने वैल्यू सिस्टम को बनाए रखा। और इस तरह की जो कृष्ण शेषाद्री जी ने उनकी बात की, जैसे उन्होंने चोला वंश की बात की, इसी तरह से उन्होंने और भी जो भारत में जितने भी ये हुए हैं साम्राज्य उनका इतिहास ठीक ढंग से जो है नहीं पढ़ाया जा रहा, तो उसको वो अपनी वेबसाइट के जरिए पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और लोग उसमें जुड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी से इतिहास को समझना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी और इसीलिए शायद आज प्रधानमंत्री ने एक काफी लंबा संवाद उनके साथ कर लोगों में एक रुचि एक तरह से विकसित करने का प्रयास किया।
और अब आते हैं हम महिला सशक्तिकरण पर। इसकी चर्चा करते हुए पीएम ने स्वनिधि से जुड़ी महिलाओं के उदाहरण जो दिए हैं पीएम स्वनिधि से, वो सामने आए। क्या छोटे उद्यमों तक आसान वित्तीय पहुंच सचमुच महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को भी सशक्त कर रही है।
अब ऐसी लाखों माताएं और बहनें हैं जिनको पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण का ये जो पहलू है, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि पीएम स्वनिधि योजना की जो लाभार्थी, इनमें 46% महिलाएं हैं, और यानी देश में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं, और ये सब बड़े छोटे कारीगर हैं, कारोबार हैं। तो ये जब जब महिलाओं का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य भी आगे बढ़ता है। जैसे आपने कहा, उनके बच्चों की शिक्षा बढ़ती है और देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान बढ़ता है, और इस तरह से महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास भी जागता है। तो यही से महिला सशक्तिकरण का एक नया रूप है, यानी रेडी पटरी के काम में जुड़ी सभी जो बहनें हैं, प्रधानमंत्री ने उनको शुभकामनाएं भी दी और पीएम स्वनिधि योजना से जो उनको लाभ हो रहा है उसकी भी चर्चा की।
और अगर महिलाओं की बात आ रही है तो हम ओडिशा के देवरीगढ़ में जो महिलाओं द्वारा जंगल के संरक्षण को आजीविका से और इको टूरिज्म से जोड़ने का उदाहरण है, उसकी भी चर्चा हुई है। क्या ये मॉडल हमें बताता है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को परस्पर विरोधी मानने के बजाय एक दूसरे का पूरक बनाया जा सकता है?
बिल्कुल। देखिए, जब जंगल का संरक्षण अगर आजीविका का साधन बनता है तो लोग बहुत उससे जुड़ते हैं। जैसे आपने भी नाम लिया, तो ये जो ओडिशा के देवरीगढ़ के गांव की जो चर्चा प्रधानमंत्री ने की थी, और उसमें एक महिला की चर्चा की, मैथिली भोए की बात की, और कहा कि ये मैथिली जी का जो जीवन है, इसमें जो बदलाव आया है वो अब दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रहा है। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण से जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही हैं, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी हैं, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। तो इस प्रकार के जो प्रयास हैं, तो प्रकृति की रक्षा भी हो रही है और जीवन में समृद्धि भी आ रही है। तो ये जो प्रयास महिलाएं कर रही हैं, ये छोटे छोटे प्रयास होते हैं, देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ये जीवन में बदलाव लाने का एक रास्ता शुरू करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जिसकी ओर आज प्रधानमंत्री ने विशेष तौर से चर्चा की, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अनेक परिवार जो हैं वो इससे जब जुड़ते हैं, हम प्रकृति की भी रक्षा करते हैं और इको टूरिज्म का भी हम एक तरह से विकास करते हैं।
स्वच्छता के क्षेत्र में युवाओं और अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं तथा स्वच्छता कर्मियों की भागीदारी के उदाहरण भी दिए गए हैं। क्या स्वच्छता को सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर नागरिक उत्तरदायित्व और जन आंदोलन बनाने की प्रक्रिया अब अधिक सशक्त हो रही है?
देखिए, जब प्रधानमंत्री ने सबसे पहले स्वच्छता अभियान की बात की थी तो उस समय कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था कि प्रधानमंत्री देखिए स्वच्छता की बात कर रहे हैं, लेकिन उस अभियान को प्रधानमंत्री ने गांधी जी के जो जन आंदोलन थे उनके साथ जोड़ा, और इसमें इनको एक तरह से जनता की भागीदारी के साथ जोड़ने की एक संकल्पना जो बनाई थी वो आज साकार होती दिख रही है। और लोग जिस तरह से इस अभियान में जुड़ते हैं और संकल्प लेकर जुड़ते हैं, वो आज हम देखते हैं कि गांव-गांव और शहर-शहर में इसके बारे में चर्चा हो रही है। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया और एक विशेष तौर से रामपुर के गांव की बात की, और वहां दो जो नौजवान हैं आकाश और रोहन, इनकी विशेष तौर से चर्चा की कि उन्होंने जो इलाका गंदगी से भर गया था और इन दोनों ने कचरे के बैग उठाए, सफाई के लिए निकल पड़े, धीरे धीरे दूसरे युवा उनके साथ जुड़ गए और टीम बन गई जिसका नाम रखा गया क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं और उन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। इसी संदर्भ में जैसे आप भी कह रहे थे, अमरनाथ यात्रा में भी स्वच्छता और जन भागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीरें देखने को मिली हैं। इन कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे, लेकिन इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को इकट्ठा किया गया और उसको प्रोसेस भी किया गया। और ये जो प्रयास विशेष रूप से हैं, ये स्वच्छता अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने, क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि श्रद्धालु लोग ही कचरा फेंकते हैं, और इस बार तो 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प किया, 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया है, और ये अपने आप में एक बहुत अनोखा प्रयोग है। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योति भी प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हमारे गांव हो या शहरों, हमारी नदियां हो या तीर्थ स्थल हो, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से ही बनती है और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है तो उन स्थानों की शोभा और बढ़ जाती है।
नागालैंड में नई फसलों और किसानों के बाजार से सीधे जुड़ने के उदाहरणों का भी प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। क्या कृषि में विविधीकरण, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नई फसलों का चुनाव और बाजार से बेहतर जुड़ाव, ये सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर खोल सकते हैं?
मैं समझता हूँ लगभग हर मन की बात के एपिसोड में नॉर्थ ईस्ट की जरूर चर्चा करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो भारत का है वो अलग थलग ना पड़ जाए, इसलिए वहां पर होने वाली जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, वहां के जो लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र, उसकी चर्चा अवश्य करते हैं। इसीलिए उन्होंने आज भी देखा कि नागालैंड के फेक जिले की वेसालुपुरी, उनकी एक कुछ यात्रा का उदाहरण दिया। किसान परिवार से बनी और बचपन से उन्होंने माता पिता को खेती करते देखा था और खुद फूलों के साथ बहुत लगाव था और 2021 में इन्होंने इसी शौक को छोटे स्तर पर करते करते अब इतना उन्होंने इस चीज को बढ़ा दिया है कि अभी फूलों की मांग बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों से फूल की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग ली और उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर हजारों पौधे उगाए। पहले प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूलों की उन्होंने बागवानी की। तो इससे जो एक नई शुरुआत बनी है, तो फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया जा रहा है, विशेष तौर से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, और जो स्थानीय बाजार में ये फूल जाते हैं आज नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक भी नॉर्थ ईस्ट के फूल जा रहे हैं। अब जब ये शौक, मेहनत इस तरह से आगे बढ़ता है तो और लोगों को भी एक नई संभावनाएं खोलने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो उदाहरण देकर प्रधानमंत्री मन की बात में चर्चा करते हैं बहुत प्रभावी रहती है।
अंत में इतिहास, संस्कृति और सिनेमा से लेकर युवा शक्ति, महिला उद्यमिता, पर्यावरण, कृषि, अंतरिक्ष और वोकल फॉर लोकल तक, इस पूरी कड़ी को देखते हुए आपके अनुसार आज के भारत के लिए मन की बात का सबसे बड़ा संदेश क्या है?
हर मन की बात एपिसोड में एक ही संदेश रहता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वाइस वसुदेव कुटुम्बकम
जी,
विकसित भारत 2047 तक बनाना है तो हमको हर क्षेत्र में काम करना होगा, हर क्षेत्र के लोगों को उसमें जुड़ना होगा, युवा उद्यमियों को जुड़ना होगा और विशेष तौर से कृषि क्षेत्र को बढ़ना होगा। इसी कड़ी में उन्होंने बंगाल के फिल्म स्टार उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी की भी चर्चा की, जिस तरह से उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और इसी तरह से आज जैसे हर बार आने वाले त्योहारों के बारे में प्रधानमंत्री हमेशा चर्चा करते हैं और त्योहारों की परंपरा है वो भारत में हमको एक दूसरे से जोड़ने का अवसर देती है। इसी से भारत में अनेकता में एकता की एक तस्वीर झलकती है और फिर जो त्योहार आने वाले होते हैं उनकी प्रधानमंत्री चर्चा करके लोगों को याद भी दिला देते हैं। जैसे 4 सितंबर को जन्माष्टमी आ रही है, फिर विश्वकर्मा पूजा आएगी और इससे हम अपने कारीगरों को, शिल्पकारों को, विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करते हैं। ऐसे ही त्योहारों के मौसम में आपने जैसे कहा कि हर बार वोकल फॉर लोकल का भी आग्रह प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं। इस बार तो उन्होंने ये भी कहा, वोकल फॉर लोकल का अर्थ केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घरों के लिए जो भी सामान खरीदे एक बार जरूर देख लें कि क्या वो भारत में ही बना है। तो भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ये लोगों की भी जिम्मेदारी है।
जी अशोक जी, आपने मन की बात की इस कड़ी में उठाए गए विविध विषयों पर सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत सारगर्भित चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 137वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में